आप सबको नमस्ते। आज ईशावास्य उपनिषद की के 15वां मंत्र 15th मंत्र की चर्चा में थे।
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।
तो ये ईशोपनिषद का ये 15वां मंत्र है जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। थोड़ा इसका सिंपल मीनिंग है, हिरणमय कहते हैं गोल्डन, सोना, गोल्ड से बने हुए चीजों से जनरली सत्य या सच जो है, जो ट्रूथ है, उसका मुंह ढक जाता है। इसलिए परमात्मा आप उस कवर को हटाने के लिए हमें एबिलिटी दो, जिससे कि हम सत्य धर्म को, जो रियलिटी को, जो ट्रूथ को जान पाए या देख पाए। पिछले बार हमने जानने की कोशिश की ये जो गोल्डन कवर क्या होता है। गोल्ड का मतलब एनीथिंग व्हिच इज अट्रैक्टिव, जो हमें अट्रैक्ट करे, वो मनी हो, पावर हो, पोस्ट हो, वेल्थ हो, गुड लुकिंग हो, रिलेशनशिप हो, जहां से भी अट्रैक्शन होता है वो सब प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉपर्टी है। और जिससे हम छोड़ने का मन नहीं करता हो, इन चीजों से जनरली हम सत्य को जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, या सत्य नहीं भी जानते हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। और इस संसार में हम अपनी रियलिटी को भी इसीलिए मोस्ट ऑफ टाइम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम उस चकाचौंध में हम खो जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बहुत ज्यादा लाइट अगर रोशनी आपके आंखों पर पड़े तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, अंधेरे में तो सत्य दिखाई नहीं देता, ये सबको पता है। पर जब बहुत रोशनी होती है, आंखें चौकाचौंध हो जाता है, तो भी हम दुनिया को देख नहीं पाते। और मुश्किल है कि जब ऐसा कोई कवरिंग, ऐसा कोई ढक्कन, जो कवर जिसके कारण हमारी कोई अच्छी चीज छुपी हुई हो, हमें पता है, और उस कवर को अगर हम खोल दें तो हमें वो अपनी चीज, छुपी हुई चीज दिखाई दे सकता है। प्रॉब्लम है कि हमारा हाथ जाता ही नहीं उसको उठाने को, क्योंकि अगर एल्युमिनियम का होता, स्टील का होता, मिट्टी का होता, कॉपर का होता तो हम आसानी से उठा के फेंक देते। प्रॉब्लम है कि ये गोल्डन है, ये डायमंड का बना हुआ है, मनी नहीं करता है कि इसको हटाएं, वो सच बात जाए कहीं भी उसकी परवाह नहीं, हम वहीं पर चिपक जाते हैं। हम इतने ज्यादा उसके अंदर फंस जाते हैं तो हम अपनी रियलिटी तक पहुंच नहीं पाते। ये हमने लास्ट टाइम काफी इस पर डिस्कस किया था। आज उसके सेकेंड पार्ट में हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे, हमारे लाइफ में जितने भी रियलिटीज हैं और उसके जो कवर्स हैं, हम इनको दो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। एक है स्कबर्ड जो कि म्यान है, एक सोड है जो तलवार है। कोई सोल्जर है, लड़ाई के मैदान में जाता है तो वो तलवार से लड़ाई करता है। म्यान जरूरी है उस तलवार को संभाल के रखने के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए, मिसयूज ना हो जाए, गलती से कहीं चोट ना लग जाए, तलवार की जो ब्लेड है, जो शार्पनेस है, वो खरोंच ना आ जाए, उसके लिए। पर जब कोई सोल्जर म्यान पर, स्कैबर्ड पर ज्यादा ध्यान देने लगे, सोड पर कम ध्यान देने लगे, तो वो फिर किसी काम का नहीं रहता है। आप स्कैबर्ड को गोल्डन बनाने लगो, उसको डेकोरेट करने लगो, तो वो आपके शोरूम में की शोभा तो बढ़ा सकता है, पर जरूरत पड़ने पर वो तलवार काम में नहीं आएगा, क्योंकि आपने तलवार को कभी ठीक से परफेक्ट बनाया ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के घर आप जाएंगे, एंटर करते ही ड्राइंग रूम में आपको बड़ा लाइब्रेरी मिलेगा, हजारों महंगे महंगे बुक सजे हुए होंगे, बिल्कुल अगर बारीकी से देखें वो बुक जब से खरीद कर आया 15-20 साल के पहले और आज तक भी वो पेज खुला भी नहीं गया है, शोकेस में रहता है। जब बुक आपकी शोकेस में रहने के लिए होता है अंदर खोखला होता है, कोई ज्ञान तो होता नहीं है, क्योंकि ज्ञान पढ़ने से होगा, रखने से तो नहीं होगा। तो जब फोकस शोकेस में ज्यादा हो तो अंदर खोखला होता है, सत्य फिर छुपने लगता है। तो वो जो स्कैबर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है दिखाने की, वैनिटी की, हमारे गर्व की, घमंड की, अहंकार की, एग्जिबिटरी नेचर की, चीजों को दिखाने की। और तलवार जिसे हम सोड कहते हैं, जो रियलिटी है, जो जिसके लिए हमने तलवार लिया था, जो हमारी जरूरत है, उसकी रिप्रेजेंट करता है। उसका मैन स्कैबर्ड सिर्फ बाहरी दुनिया है और तलवार असली दुनिया है सोल्जर का। वो हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किसको इंपोर्टेंस दें। म्यान बदल सकता है, आप बहुत चीप क्वालिटी का स्कैबर्ड भी लगा सकते हैं पर महंगा शोड रख सकते हैं, या अपोजिट कर सकते हैं, आप बहुत चीपर क्वालिटी के शोड रखिए, महंगे गोल्ड डेकोरेटेड म्यान रखिए। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपके आप सच को कितने डेकोरेटिव वे में रखते हैं। जितना बाहरी चीजें ज्यादा डेकोरेटिव होगा, बाहरी चीजों में जितना हम आडंबर करेंगे, अंदर उतना खोखला मिलेगा, उतना घिसा पीटा सोड मिलेगा जो किसी काम का नहीं है। हमारा शरीर म्यान की तरह है, स्कैबोर्ड की तरह है, और आत्मा या इंटेलेक्ट ये उस सोड की तरह है। शरीर का आकर्षण हमें इतना आकर्षण में चकाचौंध हो चुके होते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि शरीर के नीचे के लिए कभी 2 मिनट में निकाल सकूं। मेरे सुबह से लेकर के रात तक, जब से मैं जगता हूं सोने तक, सारा एफर्ट्स होता है बॉडी के लिए। बॉडी को कैसे ख्याल रखूं, सुंदर बनाऊं, अच्छा बनाऊं, हेल्दी बनाऊं। जो भी कमाता हूं, जो भी सेव करता हूं, उन सबका एक ही मोटिवेशन है कि बॉडी को सेव रखूं, ना मर जाए, बीमार ना हो, वगैरह वगैरह सब। कभी अंदर जाने की कोशिश नहीं करते हैं। उससे होता क्या है, जिन लोगों ने जितना एग्जिबिटरी चीजों पर जितना इन्वेस्ट किया, अगर आप उनकी लाइफ को देखें, वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, पैसे वाला हो, ज्ञान वाला हो, पावर वाला हो, ग्लैमरस फील्ड का हो, जिन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल चीजों पर जोर दिया, स्कैबर्ड पर जोर दिया, उनके तलवार सबके घिसे पिटे मिलेंगे। अंदर से भरे हुए, डिप्रेशन से भरा हुआ व्यक्ति मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ मिलेगा, लाइफ में हर जगह उनको वैक्यूम मिलेगा, कोई खोखलापन से भरा हुआ मिलेगा। इसीलिए कभी स्लीपिंग वो पील्स लेते रहते हैं, लेंगे, या ड्रग लेते रहते हैं, या अल्कोहल लेते रहते हैं, क्योंकि उनको किसी चीज में कोई खुशी मिल ही नहीं रही है। खुशी पाने के लिए जो कुछ उनको बताया गया सब उन्होंने इकट्ठा किया, बिलियन ट्रिलियन सब डॉलर इकट्ठा किया, बड़े से बड़े घर इकट्ठा किया, बड़े से बड़े ऐसे फॉलोअर इकट्ठा किए जो उनकी तारीफ करें, जो उनके प्रेज करें, जो उनको बड़े बड़े स्टेज में उनको बुलाएं, सब जो सब कुछ उनके पास है, तब भी अंदर से खोखले लगते हैं। और कोई झोपड़ी झोपड़पट्टी में पड़ा हुआ व्यक्ति भी आराम से रात को नींद लेती है, चैन की नींद लेती है, सुबह उठ के अपने काम पर चल जाता है, मुश्किल से 10-15-20 डॉलर कमाता है, पर अंदर से खुश रहता है। इसका अर्थ नहीं कि खुश रहने के लिए 10-15 डॉलर कमाना होता है, नहीं, वो डिपेंड करता है कि आप एक्सटर्नल चीजों पर कितना इंपोर्टेंस देते हो, अपने म्यान पर कितना इंपोर्टेंस देते हो और अपने शोड पर कितना इंपोर्टेंस देते हो। स्कैबर्ड हमारे मैटेरियल साइड का रिप्रेजेंट करता है, शोड हमारा जो रियलिटी है, जो ट्रूथ है, जो स्पिरिचुअल पार्ट है, जो हमारा ओरिजिनल पार्ट है, उसको रिप्रेजेंट करता है, उन्हीं से उसी के साथ डिस्कशन करते रहेंगे। मोस्ट ऑफ हम लोगों के बीच जो लाइफ है, और हमारे लाइफ का मोस्ट ऑफ टाइम, कुछ लोगों का पूरा लाइफ इसी से गुजर गया कि दूसरों को खुश करना है, दूसरे मतलब सोसाइटी को। कपड़े क्या पहनूं, लोग क्या कहेंगे, क्या खाऊं, लोग क्या कहेंगे, घर कैसा बनाऊं, लोग क्या रिएक्ट करेंगे, मंदिर जाऊं ना जाऊं, लोग क्या रिएक्ट करेंगे, बच्चों को कैसे पालूं, लोग क्या रिएक्ट करेंगे। तो मैं जब से मेरा समझ बढ़ा और अभी तक मेरा हर वो डिसीजन जो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो भी लिया, मोस्ट ऑफ टाइम सबकॉन्शियस में यही चलता रहा, सोसाइटी क्या कहेगी, सोसाइटी का क्या ओपिनियन होगा, दूसरों का क्या ओपिनियन होगा। और जिन लोगों के लाइफ में सोसाइटी का ओपिनियन जितना ज्यादा मैटर करता गया, अंदर से उतने खोखले होते गए। जिन्होंने अपने लाइफ में सोसाइटी के ओपिनियन को जितना कम स्थान दिया, उतने अंदर से वो स्ट्रांग, उतना ठोस और उतना मजबूत बन के निखरते गए। ध्यान दीजिएगा, लाइफ में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम का जड़ है जब हम अपने आप को रिकॉग्नाइज करने के बदले ना करके दूसरों से रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए कोशिश करते रहते हैं। हमारा वो हर वो चीज, खान पहन, रहन सहन, घर का इंटीरियर पार्ट से लेकर एक्सटीरियर पार्ट तक, हमारे बच्चों के साथ हमारा रिलेशनशिप, हमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे हमसे क्या बिहेव करते हैं, हमें प्रॉब्लम है कि पब्लिक में ऐसा मत करो, लोग क्या कहेंगे। तो हम जब जितना ज्यादा पब्लिक पर फोकस करते रहे, हमारे रिलेशनशिप उतना सुपरफिशियल बनता गया, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहता है। और जब आप दूसरों को केयर नहीं करते अपनी सच पर, सच्चाई पर, रियलिटी पर, अपनी आप अंडरस्टैंडिंग पर, अपनी कन्विक्शन पर डिपेंड करते हैं, उतना आपका और आपके साथ जिनका भी रिलेशनशिप बनता है, वो रिलेशनशिप पैसे का हो, वो बच्चों का हो, स्पाउस का हो, घर का हो, गाड़ी का हो, वो जड़ हो, चेतन हो, उतना मजबूत बनता है। तो शास्त्र की भाषा में वो लोग बड़े कावर्डिक नेचर के होते हैं। वैसे तो हम सब में सब किसी ना किसी हद तक नेचर के होते हैं, और जिन्होंने भी ये डेयरिंग नेचर दिखाया, केयर नहीं किया सोसाइटी क्या सोचती है क्या समझती, वो हम सबसे हमेशा ऊपर उठ गए। वो रिलीजियस फील्ड हो, स्पिरिचुअल फील्ड हो, साइंटिफिक फील्ड हो, पॉलिटिकल फील्ड हो, किसी भी फील्ड में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनके अंदर वो डेयरिंग नेचर होता है, जो सोसाइटी में चलने वाले सो कॉल्ड ओपिनियंस को केयर नहीं करते, जो कन्विक्शन है उसके साथ चलते हैं। आप सोसाइटी के साथ चलते हैं क्योंकि आपको रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत है। इसीलिए हम वो लोग जो जितना ज्यादा दूसरों के ओपिनियन पर डिपेंड करते हैं, उनका लाइफ इतना सुपरफिशियल हो जाता है, एग्जिबिटरी हो जाता है, वो उतना स्कैबर्ड को चमकाने में लगे रहते हैं, अंदर का सोड घिसा पिटा हो जाता है, अंदर की सुख कहीं मिलता नहीं है, क्योंकि पूरी की पूरी लाइफ हमारा सुपरफिशियल आर्टिफिशियल बन जाता है। इसीलिए यह बड़ा जरूरी है कि हम अपनी कन्विक्शन को समझें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को समझें, अपनी नीड को समझें। हर व्यक्ति की अपनी जरूरतें हैं, अपनी समस्याएं हैं, अपने सुख हैं, अपनी दुख है, अपनी समझ है। जब हम अपने समझ के हिसाब से अपनी दुनिया से चलते हैं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। और ये यकीन मानिए, जिस भी फैमिली में पड़ोसी ज्यादा मैटर करते हैं, पड़ोसी का ओपिनियन, जिस भी व्यक्ति में पार्टी में लोग क्या कहेंगे वो ज्यादा मैटर करता है, वो कभी भी खुश हो ही नहीं सकता। आप कितनी अच्छी साड़ी, महंगा साड़ी पहनकर जाइए, ऑर्नामेंट पहनकर जाइए, कि पार्टी में लोग क्या क्या आज मुझे कितने आज वो फेसबुक का लाइक मिलेगा, कितने लोग बोलेंगे कि बढ़िया साड़ी है, महंगी साड़ी कहां से ली, कितने की ली, ये नेकलेस कहां से लिया, ये घड़ी कहां से लिया। इस आशा से जब हम जाते हैं, हमेशा शाम को रात को आते समय दुखी होकर आते हैं। अगर 15 लोगों ने तारीफ की, 2 लोगों ने कुछ टेढ़ी नजर से देख लिया, सारा पैसा बर्बाद हो जाता है। पहना तो सुख पाने के लिए, पर रात को आते हुए दुख लेकर आया क्योंकि 2-4 लोगों ने अभी भी क्या इतने पैसे खर्च किया, कुछ नहीं हुआ। तो इसीलिए ये जो ईश्वर ने हमें ये राइट दे रखा है, ये डिवाइन राइट है हमारा कि हमारी लाइफ कैसी होगी, मैं क्या समझता हूं, क्या बोलूं, क्या समझूं, क्या मानूं, मुझे क्या अच्छा लगता है, ये एक्सक्लूसिवली मेरे राइट होना चाहिए। और जब आप इस राइट को समझते हैं, इस सत्य को समझते हैं, फिर आपका लाइफ बिल्कुल दूसरा होता है। आप क्या पहनते हैं, यू डोंट केयर, पब्लिक आपको क्या बोलेगी, आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं, आपको दूसरों से कोई मतलब। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बड़े इंडिसेंट बिहेव करें लोगों के साथ, इसका अर्थ यह नहीं है कि आप मैनर से ऊपर उठ जाएं। आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव करेंगे उसके लिए तो आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत है, पर आप अपने साथ क्या बिहेव करेंगे, इट शुड बी योर एक्सक्लूसिवली योर ओन डिवाइन राइट। जब हम उसके साथ कंप्रोमाइज करते, क्यों करते, अगेन टू एग्जिबिट, टू शो। ये जो शोइंग नेचर होता है, ये जो गोल्डन अट्रैक्शन है, ये सत्य को छुपाता है। ये गोल्डन अट्रैक्शन क्या है, पब्लिक ओपिनियन का बड़ा अट्रैक्शन होता है, ये गोल्ड से भी ज्यादा अट्रैक्टिव होता है। अपने आप को पब्लिक से रिकॉग्नाइज्ड कराने का जो एक लालच है, वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव होता है, लोग किसी भी हद तक अपने कंप्रोमाइज करने को तैयार होते हैं। आज बच्चे, हमारे बच्चे या कोई भी, दुनिया भर के आजकल के टीन एज के बच्चे, यंग बच्चे देखिए, वो क्या कहते हैं उसको, जीरो फिगर बनने की कोशिश में लगे हैं। मतलब शरीर में हड्डी के और स्किन के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इसका क्या यूज है, सिवाय कि लोग आपको सुंदर, एक फैशन चला हुआ है कि जो स्लिम है, जो बहुत ज्यादा स्लिम है वो अच्छा लगता है। ये भी फैशन बदलता रहता है और हर सोसाइटी में बदल, इसके अलावा ये कोई हेल्दी लाइफस्टाइल तो है नहीं है। जैसे ही आप पब्लिक ओपिनियन को मैटर करने लगते हैं, आप अंदर से कमजोर होते हैं, आपको हजारों गोलियां खानी पड़ती है क्योंकि आपके अंदर कुछ है ही नहीं है सिवाय स्किन और बोन के। आप कुछ खाते पीते नहीं है, नेचर के साथ आपका कोई तालमेल नहीं है, आप किसी चीज को एंजॉय नहीं कर पाते सिवाय कि दुनिया मुझे सुंदर बोले, दुनिया मुझे अच्छा बोले, इसके अलावा आपको कोई कुछ भी नहीं मिल पाता है। यह बड़ा जरूरी है। इसी तरह द मैन हु लिव्स बियॉन्ड हिज मीन्स, हु मॉर्टगेजेस हिज फ्यूचर फॉर हिज प्रेजेंट, हु इज जेनरस बिफोर ही इज जस्ट, इज रियली लॉसिंग मच ऑफ लाइफ। तीन चीजें, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी मेरी एबिलिटी है, मैं उतने में खुश रहने की कोशिश करूं। जब मैं अपने चादर से ज्यादा फैलाने की कोशिश करता हूं, तब मैं कर्जा लेने की कोशिश करता हूं। मैं सिर्फ अपनी एग्जिबिटरी लाइफ जीने के लिए, सोसाइटी में, अपने फ्रेंड सर्कल में अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए जब मैं खर्च करने लगता हूं, तो नेचुरली मेरे इनकम से ज्यादा स्पेंडिंग बनता है। जब आपके इनकम से आपकी स्पेंडिंग ज्यादा बनने लग जाए, आपका मतलब इस दुनिया में करोड़ों लोग करते हैं और वो स्पेंड इसीलिए नहीं करते हैं कि उनकी वो नीड है, इसीलिए कि अगेन अपने आप को कुछ दिखाना है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा घर बनाना। पैसा हो तो जरूर करना चाहिए, जितना कमाई है उसके अंदर हो सकता है तो जरूर होना चाहिए, पर जब बियॉन्ड दैट जाते हैं तो हम अपने आप को बर्बाद करते हैं। तो हम अपने प्रेजेंट एक टेम्पररी खुशी के लिए, कोई हमें तारीफ कर दे, इसके लिए हम अपने फ्यूचर बर्बाद करते हैं। उसका परिणाम होता है लाखों करोड़ों लोग क्रेडिट में पड़े रहते हैं, पूरी जीवन सड़ते रहते हैं, और आगे का लाइफ बुढ़ापा के लाइफ में कुछ बचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि जवानी में दिखाने के चक्कर में उस स्केपबोर्ड को, वो म्यान को चमकाने के चक्कर में अंदर का लोहा ही बेच डाला, तलवार ही नहीं बचा है, आगे क्या काम आएगा। इसी तरह दानी होने से, उदार होने से ज्यादा बेहतर होता है जस्ट होना, न्यायप्रिय होना, जो जैसा है अच्छा बनना, परफेक्ट बनना, जो जैसा है उसको एक्सेप्ट करना, उसको मानने की आदत डालना। अगर मैं अनजस्ट पर्सन हूं, अन्यायी हूं, बुरे का साथ देता हूं, अच्छे के साथ कंप्रोमाइज करता हूं, पर मैं बड़ा उदार व्यक्ति हूं, ऐसा नहीं कि ये कोई रैंडम कोई एग्जाम्पल है, करोड़ों लोग हमारे में से ऐसे ही होते हैं जो पब्लिक में बड़े जेनरियस होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, पर उनके अंदर झांक के देखेंगे, उनके फैमिली में जाकर देखेंगे कितने खराब उनकी पर्सनालिटी होती है। इसीलिए कहा ये जेनरियस होने से आपको पब्लिक अप्रिसिएशन मिलता है, पर अगर आप उदार होने के साथ साथ आपके अंदर वो जस्टिस वाला क्वालिटी नहीं है, अगर आप अनजस्ट हैं, दूसरों के साथ न्याय नहीं करते, तो आप सुपरफिशियल हैं। अगेन आपको किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं मिलने वाला, स्पिरिचुअल व इंटरनल फायदा या वो सत्य को खोज आप नहीं कर सकते। इसलिए ये बड़ी जरूरी है, आप जेनरियस बने ना बने, आप उदार बने ना बने, दूसरों का मदद करें ना करें, अगर कुछ कर सकते हैं अपने आप को जस्ट बनाने की कोशिश करिए, अपने आप को न्याय के साथ चलने वाला बनाने की कोशिश, ये जरूरी होता है। प्रॉब्लम है कि ये मुश्किल है, ये इनसाइड क्वालिटी है, ये किसी को दिखेगा नहीं, क्योंकि दिखेगा नहीं इसीलिए जनरली हम इसको इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। पर जस्ट होना आपकी डिवाइन नेचर को ज्यादा सुंदर बढ़ाता है, और जेनरियस होना आपके एक्सटर्नल पर्सनालिटी को डेवलप करता है। दोनों होना जरूरी है, पर अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना है, यू हैव टू जस्ट इंस्टेड ऑफ योर जेनरियस पर्सन। इसी तरह द पर्सन हु स्पेंड्स थाउजेंड्स इन चैरिटेबल डोनेशंस एंड इज हार्ड एंड अनचैरिटेबल इन हिज जजमेंट्स, sentimentally sympathetic with human sin and weaknesses in abstract, and while he arrogates to himself omniscience in his harsh condemnation of individual lapses, is charitable only on the outside. ये भी आपको लोग मिल जाएंगे, बाजार में, सोसाइटी में लोग मिलेंगे, आप करोड़ों की, लाखों की, थाउजेंड्स की चैरिटी हेल्प करते हैं, लोगों को डोनेट करते हैं, आप बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, आप बड़े हेल्पिंग नेचर के हैं, पर आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपकी फायदे के हिसाब से आपको लोगों का पाप नहीं दिखता है, पुण्य नहीं दिखता है, और जब फायदा हो तो आप लोगों के पुण्य को भी क्रिटिसाइज करते हो, अच्छाई को भी क्रिटिसाइज करते हो, लोगों की बुराई को अवॉइड करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आपको उदार बनना है, आप छोटी छोटी चीजों के लिए लोगों को भला बुरा कहते हो, पर आप बड़े चैरिटी करने वाले व्यक्ति हो, आप बहुत हेल्प करते हो, इसका मतलब है आपकी नेचर में चैरिटी का लक्षण नहीं है, आप लोगों को तड़पाने में मजा आता है, लोगों को आप मैनिपुलेट करने में मजा लेते हो, तब भी आप चैरिटेबल काम्स करते हो, इसका मतलब है चैरिटेबल काम आपकी वो स्कैबर्ड है, वो दिखाने का है, वो गोल्डन शाइनिंग नेचर है, जिससे आपको वो अप्रिसिएशन की जो ललक है, लालच है, वो चाहिए, न कि आप बाय नेचर आप एक जेन्युइन सुख पाने वाले, सुख ढूंढने वाले, रियलिटी को ढूंढने वाले व्यक्ति होते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है आप चैरिटेबल बाद में बन जाना, पहले अपने पाप पुण्य को ठीक से समझ लेना, लोगों के पाप पुण्य को इग्नोर करना नहीं करना, अप्रिशिएट करना वो सीख लेना, नेक्स्ट टाइम चैरिटेबल बन जाना, चैरिटी करने वाला बन जाना, ये जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है फिर वो चैरिटेबल एक्टिविटीज आपकी सिर्फ आउट एक्सटर्नल हो जाता है, दिखाने का म्यान बन जाता है। इसी तरह जो लड़की या जो पैसे के लिए शादी करते हैं इसीलिए नहीं, या लड़का हो लड़की इसीलिए शादी नहीं करते हैं कि जो स्पाउस है वो केयरिंग है, वो सॉफ्ट हार्टेड है, वो ऑनेस्ट है, इसीलिए नहीं, इसीलिए कि उसके पास बहुत पैसा है, बड़े घर का लड़का या लड़की है, बहुत कुछ पैसा है, बहुत इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत प्रॉपर्टी है, इसीलिए शादी करते हैं। लाइफ में कभी आपको उस स्पाउस से सुख नहीं मिलने वाला है। आप करोड़ों डॉलर खर्च करके शादी करो, कराओ, वो लाइफ मिजरेबल होता है, क्योंकि उसके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई मेंटल कनेक्शन नहीं है, कोई सोल का रिलेशनशिप नहीं है, कोई प्यार नहीं है। आपने प्यार करके शादी नहीं किया, आपकी उसकी पर्सनालिटी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको तो बैंक बैलेंस में इंटरेस्ट था। इसीलिए ऐसे लोगों के लाइफ मिजरेबल होता है, वहां सेपरेशन जल्दी होता है, सेपरेशन से वहां अंडरस्टैंडिंग भी कम होती है, क्योंकि शादी से पहले जो आपने पब्लिक को क्या बोला अलग बात है, जो आपने अंदर जो आपने पैरामीटर बनाया था वो पैरामीटर आपके कुछ दूसरे थे, कि पैसा होना चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अच्छे खानदान का होना चाहिए, ये सब पैरामीटर था। वहां तो कोई ये पैरामीटर था ही नहीं कि वो बच्चा या लड़का या लड़की वो कितना सॉफ्ट है, कितना ऑनेस्ट है, कितना केयरिंग है, कितनी फॉरगिविंग है। ये तो उस समय आपके आपने कभी कंडीशन रखा ही नहीं था, अपने पैरामीटर बनाया ही नहीं था। और शादी होने के बाद नेचुरली ऐसा मैरिज तो कभी सुखी होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आप उस गोल्डन वैसल के अट्रैक्शन में फंसे हुए थे जो बाहरी दुनिया की चमक है। मुझे हैंडसम लड़का चाहिए, ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। और बहुत सारे लड़के खूबसूरत लड़कियों से शादी करने के दो साल के बाद रोते फिरते हैं, बहुत सारे लड़कियां भी खूबसूरत लड़कों के साथ शादी करने के बाद भी लड़के फिरते हैं, क्योंकि आपकी पैरामीटर में खुश सुख ढूंढना नहीं था, आपके पैरामीटर में प्यार करने वाला करने वाली नहीं था, आपके पैरामीटर में केयरिंग नहीं था, आपके पैरामीटर में फॉरगिविंग नहीं था, आपके पैरामीटर में था कि वो हैंडसम होना चाहिए, 6 फुट 2 इंच होना चाहिए, 5 फुट 9 इंच होना चाहिए, स्लिम बॉडी होनी चाहिए, ये क्राइटेरिया होना चाहिए, इतना कमाना चाहिए, वही तो मिला, पर खुशी नहीं है, क्योंकि इससे खुशी थोड़ी भी मिलती है, ये तो दिखावटी है, एक तो एग्जिबिटरी है। यहां भी हम मैन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं तलवार के कंपैरिजन। इसी तरह हमारे लाइफ में ये जो मैटेरियल वर्ल्ड है ये तलवार का मैन है, और जो हमारा अपनी लाइफ है, जो इंटीरियर लाइफ है, वो सोड है। जिनको चमक पसंद है वो सांसारिक दुनिया को एंजॉय करते हैं। बहुत सारे लोग, जैसे जितने भी लोग एनआरआई मतलब भारत से बाहर जाते हैं, जरूरी नहीं भारत से, अलग अलग देश से हर कोई माइग्रेट कर, हर देश के लोग अलग अलग देशों में माइग्रेट करते रहते हैं, पर हम इंडिया से हैं तो चलिए हम अपनी एग्जांपल लेते हैं। जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज में यूएसए ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन यूरोप देश में आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आते हैं कि यहां अच्छी कमाई होगी, लाइफस्टाइल अच्छी होगी, लाइफ अच्छा होगा, जो हम काम करते हैं उसकी रिकॉग्नाइजेशन अच्छा मिलेगा, पर सब इसी उद्देश्य से नहीं आते हैं। बहुत सारे आते हैं क्योंकि यहां आने पर उनको वो लाइफ मिलेगा जो उनको अपने देश में नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग आते हैं कि वहां कम पैसा मिलता है, यहां ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा कमाया, पर अपने कल्चर को, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी रिलीजन को, अपनी स्पिरिचुअलिटी को, अपनी लैंग्वेज को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। यहां भी वो वही करते हैं जो भारत में करते थे। उनका फिजिकल रिलेशनशिप तो दूसरे देश के साथ होता है, पर मेंटली स्पिरिचुअली स्टिल दे आर इंडियंस, यस, जो देश जैसे आता है, पर ऐसा सबके साथ नहीं होता है। बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि उनको यहां का नाइट क्लब ज्यादा पसंद है, इनका फ्री कल्चर इनको ज्यादा पसंद है, वो यहां आने के बाद गलती से भी किसी इंडियन फ्रेंड की तरफ इंडियन व्यक्ति से फ्रेंडशिप नहीं बनाते क्योंकि अगेन उनको वो पुराने ढकोसलेबाजी में जाना पड़ेगा, सोसाइटी कल्चर रिलीजन ये सब हमें नहीं करना, इसीलिए तो हम यहां आए। बहुत सारे यंग कपल्स यहां आते हैं जो इसी सोच के साथ आते हैं। सेंसुअल एंजॉयमेंट भी वो गोल्डन लीड है जो हमें मजबूर करता है अंदर ना जाने के लिए। जब भी हम सेंसेस की वो एंजॉय करते रहते हैं सेंसेस के द्वारा एंजॉय करते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है कि कभी हम अंदर की यात्रा करें, कभी हम मेडिटेशन करें, कभी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहें, नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग अगर ईश्वर को अगर नास्तिक हैं, मतलब थ्योरिटिकली नहीं प्रैक्टिकली, मे बी थ्योरिटिकली दे बिलीव इन गॉड, प्रैक्टिकली दे डोंट डू एनीथिंग रिलेटेड टू गॉड। वो इसीलिए नहीं है कि उनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है व ईश्वर को उनको धार्मिकता नहीं है, वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो मैटेरियल चीजों में इतने ज्यादा डूबे हुए होते हैं, वो ना उनके पास वो टाइम मिल पाता है ना मेंटली वो अपने आप को रेडी कर पाते हैं कि उस चीज की ओर जाएं। खास करके आप देखेंगे जो यंग पेरेंट्स होते हैं, यहां बहुत कम, अब संस्कृति स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, अब यहां कम आते हैं। उसके रीजन बहुत सारा है पर एक रीजन उनमें से डेफिनेटली ये है, वो एक ऐसा एज होता है जो लोगों को लगता है कि इस एज में मुझे ये सब करना शोभा नहीं देता है। क्या कहेंगे मेरे फ्रेंड्स, मंदिर जाता है, प्रवचन सुनता है, तो बाबा बन गया है। ये बड़ा पर्सनालिटी प्रॉब्लम हो जाता है। मैं 35-40 ईयर्स ओल्ड में मंदिर में बैठता हूं, सत्संग में जाता हूं, प्रवचन सुनता हूं, तो फ्रेंड सर्कल में नाक कट जाता है जी, है ना। तो नाक बचाने के लिए आना नहीं पड़ता है, मजबूरी होती है। घर में आपने पार्टी रखी, अगर अल्कोहल नहीं है, क्या पूंगा पंथी पुराने जमाने का, तू तो पंडित बन गया यार, बड़ी बेइज्जती होती है। फिर क्या करें, करना पड़ता है। अगेन सोशल ओपिनियन कभी कभी इतना हावी हो जाता है, आपको पता है कि बड़ी अच्छी चीजें हैं पर कर ही नहीं सकते क्योंकि फ्रेंड सर्कल में नाक भी तो बचानी होती है ना, ये भी क्राइटेरिया होता है। तो देवियों सज्जनों, हमारी जो इंद्रियों का भूख है, अगर जिसका जितना ज्यादा आकर्षण होता है, अट्रैक्शन होता है सेंसुअल प्लेजर के प्रति, वो अंदर की यात्रा उसकी उतनी कम होती है। और ये जो मी है, आई, ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव वर्ड है इस दुनिया में। अगर कोई वर्ड ऐसा है जो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, सबसे ज्यादा हमारा ऑब्सेशन है किसी वर्ड के प्रति, वो होता है आई, मैं और मेरा। ये मैं और मेरा से ज्यादा गोल्डन वेसल, कोई चमकीला और अट्रैक्ट करने वाला चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। और ये मैं क्या चीज है, ये एक साइकोफिजिकल इंडिविजुअलिटी, माइंड और बॉडी का एक कॉम्बिनेशन है, दैट्स इट। और जिसका मैं जितना ज्यादा हेवी होता है, वो कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ जी नहीं सकता। इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी में या रिलीजियस एक्टिविटीज में जो एक चीज आपको बार बार सुनने को मिलता है, किसी भी रिलीजियस प्रोग्राम में जाइए, किसी भी टेक्स्ट बुक पढ़िए, कोई भी रिचुअल्स आप करिए, उसमें जो एक चीज बार बार उभर कर आता है, जिसके अहंकार को कंट्रोल करो। यह अहंकार क्या है, आईनेस है, मीनेस है। आईनेस जितना ज्यादा आपके अंदर बड़ा होगा, पावरफुल होगा, उतना आप अपने आप को जान नहीं सकते। और आईनेस एक टेम्पररी आइडेंटिटी है, अपने आप में एक फल से। इसीलिए सब ऋषि मुनि तपस्वी वेद शास्त्र यज्ञ सब आपको कहते हैं कि अहंकार पर कंट्रोल करो। अहंकार मतलब आईनेस पर कंट्रोल करो। जितना इस पर काम करोगे उतना जल्दी अंदर जा सकते हो। देवियों सज्जनों, जब हम ये जो गोल्डन वेसल हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं जब समझ जाएं, ये हिरणमय पात्र कौन से हैं मेरी इंडिविजुअल लाइफ में, मेरी फैमिली में, मेरे घर में, मेरे देश में, जब हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, अपने से रिलेटेड ह्यूमन वेसल जो मुझे अट्रैक्ट करते हैं, ब्लाइंड कर देते हैं, उनकी शाइनिंग नेचर के कारण, उनकी ब्रिलियंस के कारण, सूरज की धूप से जैसे आंखों को दिखता नहीं, चकाचौंध हो जाते हैं, वो चौंधियाने वाले चीजों को अगर हम आइडेंटिफाई कर सकें, उस पर काम कर सकें, तो हम वो रियलिटी को जान सकते हैं जो उससे ढका हुआ हो। वो रियलिटी मेरे लाइफ की खुशी हो, वो रियलिटी मेरी अपनी आइडेंटिटी आत्मा हो, वो रियलिटी मेरे रिलेशनशिप के लिए जरूरी चीजें हो, वो हस्बैंड एंड वाइफ का, पति पत्नी, मां बाप और बच्चों का, वो रिलेशनशिप मेरा और देश दुनिया के साथ हो, वो रिलेशनशिप मेरा और ईश्वर के साथ हो, वो रियलिटी मेरी अपनी हो, ये जो भी ओवरऑल रियलिटी है, ट्रूथ है, वो तभी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें जब हम उसके आसपास चौंधियाने वाले, वो हमें आंखों को ब्लाइंड कर देने वाले चीजों को आइडेंटिफाई कर सकें। देवियों सज्जनों, ये सारा संसार सत्य को ढकने के लिए जो अट्रैक्टिव चीजों से भरा पड़ा है, जिसको जितना रियलिटी के क्लोज होना है जिस भी फील्ड में, उसको उतना उस रियलिटी से रिलेटेड कवर, और कवर खासली अल्मीनियम का बना हुआ, स्टील का बना हुआ नहीं, गोल्डन और डायमंड का बना हुआ, मतलब अट्रैक्टिव कवर, जिसको हटाना, हमें पता तो है ये कवर करता है, ये छुपाता है, पर उसको हटाने को हाथ नहीं जाता है जब तक हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करें और अपने अंदर वो डेयरिंग नेचर न आए, तो हमारे लाइफ में सच हमेशा छुपता रहेगा और ये सो कॉल्ड अट्रैक्टिव चीजें हमें छुपाते रहेंगे। वो सोशल रिकॉग्नाइजेशन हो, वो अपने को अच्छा दिखाने सुनवाने की चक्कर में हो, या सेंसेस को खुश देने की हो। इसी बात के साथ यहीं विराम देते हैं। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।